अहाना और अंतरा दोनों के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली हो गया था। गिनती के चार लोग रह गए थे, उनमें भी कुछ खास बात नहीं होती थी। रिश्तों पर अहम और नाराजगी की इतनी गहरी परत बिछ चुकी थी कि उनके बीच वो रिश्ते अब दम तोड़ने लगे थे और अबूलापन छा गया था। अन्वय और अभिजीत जी जब शोरूम से घर लौटे, अन्वय सीधे शोरूम ही पहुंचा था, तो आज घर में कदम रखते ही पानी का गिलास उनके आगे हाजिर नहीं हुआ था। आवाज लगाने पर रसोई से रूपाली जी पसीने से तरबतर बाहर आईं और आते ही अन्वय पर भड़क उठीं। एक पानी भी आकर खुद से नहीं लिया जाता, आते ही गला फाड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे घर में 10 नौकर लगे हैं तुम्हारी चाकरी में। एक तो वो महारानी बिना किसी काम के मायके जाकर बैठ गई है, हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त करके रख दिया है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं, समय पर कुछ मिल नहीं रहा, इस उम्र में हमें यहाँ सब अकेले करना पड़ रहा है, कोई हाथ पटाने वाला भी नहीं, उस पर हुक्म चलाने सब आ जाते हैं। अन्वय को सुनाते हुए उन्होंने ट्रे टेबल पर लापटक दिया। सुबह का सब काम आहाना करके गई थी और बस एक वक्त का काम का बोझ सर पर आया कि रूपाली जी को दिन में तारे नजर आने लगे। एक तो रसोई में कहाँ क्या रखा है कुछ पता नहीं, उस पर ये एक अलग मुसीबत उनके सर पर आ गिरी थी, तो बुरी तरह चिढ़ गई थी वो और आहाना को कोसने से भी बाज ना आई थी। उनकी ये हालत देखकर जहां अभिजीत जी के मन में सुकून उतरा था, वहीं अक्षय के लबों पर शैतानी मुस्कान बिखर गई थी। अरे मम्मी, ये सब काम तो भाभी सालों से रोज करती आ रही हैं, कोई 10-15 नौकर नहीं लगे, वो अकेले ही सब काम संभालती हैं और कभी ऐसे नाराज भी नहीं होती, और आप भाभी को क्यों कोस रही हैं? 7-8 महीने बाद तो वो अपने घर गई हैं, वरना शादी के बाद से तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने अकेले ही संभाली है, पूरे घर को व्यवस्थित रखा है। उनके राज में तो आपने कभी एक गिलास पानी भी खुद से उठाकर नहीं लिया, रसोई की शक्ल तक नहीं देखी। अगर उनके साथ कभी काम करवाया होता तब तो आपको मालूम होता कि क्या चीज़ कहाँ रहती है, अब सालों बाद काम करेंगी तो परेशानी तो होगी ही। तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान को ज्यादा काम चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने हाथ पैर चलाते रहने चाहिए और आसपास का ध्यान रखना चाहिए, वरना जरूरत पड़ने पर शरीर साथ नहीं देता, और यही हाल होता है जो अभी आपका हो रहा है। स्वभाव के चंचल अन्वय ने मौके पर ऐसा शॉट मारा कि बॉल सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। अपनी माँ को क्लीन बोल्ड कर दिया था उसने, खूब ताने मारे और अपने दिल को ठंडक पहुंचाई। जहां अन्वय मुस्कुरा रहा था, वहीं उसकी बात सुनकर रूपाली जी गुस्से से तिलमिला उठी। अन्वय को जलती निगाहों से घूरते हुए वो फुंफकाती हुई वापस रसोई में चली गई, और उनके जाते ही अन्वय बेआवाज ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अपने बेटे की शरारत देखकर अभिजीत जी मुस्कुराए बिना ना रह सके। आज डिनर में बस दाल चावल और पापड़ ही मिला था। आहाना से तो खूब फरमाइशें होती थी, पर खुद की बारी में सबसे आसान जो था वो बनाकर अपने सर की मुसीबत उतार ली थी उन्होंने। खाना उनकी नीयत के अनुसार ही बना था, दोनों आदमी बेमन से थोड़ा सा खाकर चले गए। अक्षय देर रात घर लौटा, जल्दी आने की वजह जो घर में नहीं थी तो घर आने का मन भी नहीं हुआ। जब घर आया तो आज आहाना नहीं, रूपाली जी उसका इंतजार कर रही थी, उनके चेहरे से ही थकान झलक रही थी। बेटा, तुम हाथ मुंह धोआओ, हम खाना लगाते हैं, शब्दों में मिठास घोलते हुए उन्होंने अपना प्यार छलकाया। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, बाहर से खाकर आया हूँ, अगर बना सकें तो एक कप कॉफ़ी ला दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आई मैनेज। अभी बना देते हैं बेटा, मन ना होते हुए भी उन्होंने तुरंत ही हामी भरी, आखिर अच्छी माँ बनने का ये सुनहरा मौका वो कैसे छोड़ देती। अक्षय ने सर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसका मन उदास और नीरस था, कुछ करने को जी ही नहीं जा रहा था। बेमन से फ्रेश होकर कपड़े बदलकर नीचे पहुंचा, तब तक रूपाली जी भी कॉफी बनाकर ले आईं और मुस्कुराते हुए उसके सामने ही बैठ गईं। अक्षय ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर कॉफी का मग उठाते हुए बोला, कुछ कहना है आपको? अगर नहीं तो जाकर सो जाइए, रात बहुत हो गई है। सो जाएंगे बेटा, कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ लें, कितना वक्त बीत गया ऐसे आपके साथ बैठकर बात किए हुए। उनकी बात सुनकर अक्षय के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए, पर उसने कहा कुछ नहीं। उसने अभी कॉफी का मग लबों से लगाया ही था कि रूपाली जी के शब्द उसके कानों से टकराए और उसकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। बेटा, तुमने ऐसे अचानक आहाना बहू को उनके घर क्यों भेज दिया? उनका सवाल सुनकर अक्षय ने वापस कप टेबल पर रख दिया और भावहीन चेहरे के साथ सपाट लहजे में जवाब दिया, बहुत वक्त हो गया था उन्हें अपने घर गए हुए, अंतरा जा रही थी और आहाना की कुछ ही छुट्टियां बची थीं तो साथ में वो भी चली गई। वैसे भी कल आपने ही तो कहा था कि वो हमेशा के लिए अपने घर चली जाए, इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं, आप तो हमेशा के लिए उन्हें भेजना चाह रही थी, पर वो तो बस कुछ दिनों के लिए ही गई है, आई डोंट थिंक इससे आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अक्षय का जवाब सुनकर पल भर को रूपाली जी सकपक आ गईं, अपनी ही बात में फंसती हुई नजर आईं, पर जल्दी ही उन्होंने बात को घुमाते हुए उसका रुख मोड़ा। अरे बेटा, वो तो हम गुस्से में कह गए थे, हमारी बात का वो मतलब नहीं था, और हमें उनके मायके जाने से कोई परेशानी नहीं, हमें तो बस आपकी चिंता है।
उनकी ये बात सुनकर अक्षय की भौंने सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं और गहरी निगाहों से वो उन्हें देखने लगा। मेरी चिंता क्यों है आपको? उसका सवाल सुनकर रूपाली जी ने तुरंत ही उसकी शुभ चिंतक बनते हुए चिंतित स्वर में सवाल दिया। आपका काम ऐसा है कि दिन रात कुछ नहीं देखते, आज भी कितने देर से लौटे हैं। बहू घर में रहती तो आपका ख्याल रखती, आपके खाने पीने से लेकर आराम तक की व्यवस्था करती। हमारी तो अब उम्र हो गई है, ज्यादा काम भी नहीं किया जाता और देर रात तक जाग भी नहीं पाते। ऐसे में आपको कितनी परेशानी होगी। उस पर पत्नी के घर पर ना होने पर आपको अपने हर छोटे बड़े काम खुद करने पड़ेंगे। वो तो वहाँ आराम करेंगी, पर यहाँ आपको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो अगर आपका ही सोचकर कुछ दिन रुक जाती, अंतरा वापस आ जाती, उसके बाद चली जाती तो अच्छा रहता। घर गृहस्थी भी चलती रहती और सब काम भी ठीक से होते। मिश्री में घोलकर खुद को शराफत का पुतला बनते हुए वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे इन सब में उनका अपना कोई स्वार्थ ही नहीं। पर अब अक्षय उनकी मीठी मीठी बातों में फंसने वाला नहीं था। उनकी नीयत उसे साफ साफ नजर आ रही थी और चेहरे पर बेरुखी भरे भाव उभर आए थे। मन कड़वाहट से भर गया था।